ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जाय उदीरहे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्णा। तो आज हमारे वैष्णव कैलेंडर के अनुसार वामन देव भगवान का आविर्भाव दिवस और हमारे छह गोस्वामी में से जो लास्ट में है जीव गोस्वामी उनका भी आविर्भाव दिवस है। तो आज संक्षिप्त में वामन देव की लीला आपको बताएंगे जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में आठवें स्कंद में आता है। तो ये संपूर्ण वामन लीला जो है ये 12 अध्याय में इसका उल्लेख आता है। तो भागवतम में बताया गया है कि जब भी राजा परीक्षित बहुत ही उत्सुक थे, खास करके बलि महाराज जो है उनसे वामन देव ने किस प्रकार सब कुछ हरण कर लिया, तो उनके प्रसन्नता के लिए जो है सुखदेव गोस्वामी ने इस कथा को बाद में विस्तारित से सुनाया। तो ऐसे इस कथा से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो संक्षिप्त में एक लेसन, वो हमें एक अध्याय सीखना चाहिए कि अगर हमसे भगवान कुछ लेना चाहते हैं तो हमें रोक के नहीं रखना चाहिए। तो हमसे भगवान कुछ ले रहे तो उससे भी 10 गुना 1000 गुना कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ देने वाले ही हैं। तो इस लीला से ऐसे कुछ सबक सीखना चाहिए, बहुत सारे सबक सीख सकते हैं। तो हमारे आचार्य ने बहुत सारे इसमें टिप्पणी दी है। तो इसमें हमें वामन देव यही बताते हैं कि बलि महाराज को बताते हैं कि एक व्यक्ति जो लोभी है वो व्यक्ति कभी तृप्त नहीं हो सकता। तो ये काफ़ी लंबी लीला है, 12 अध्याय है, लेकिन आज आपको उसे हम जो है आधे घंटे में इसका सिर्फ आउटलाइन, जैसे बच्चों को कहानी बताते हैं उस प्रकार आपको सिर्फ श्लोक वगैरह कुछ बताएंगे नहीं। तो आज जो है द्वादशी, इसको विजय जो है विजय ऐसे कैलेंडर में बताया जाता है, द्वादशी विजय कहा जाता है। तो इसको श्रवण द्वादशी भी कहा जाता है। और आज के दिन चंद्रमा जो है वो श्रवण राशि में होते हैं और ये अभिजीत मुहूर्त, इस प्रकार भगवान जो है इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए थे। तो ये भागवतम में इसका उल्लेख दिया है। तो सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज से उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार ये लीला आरंभ हुई। तो ऐसे बताया जाता है कि जब ये समुद्र मंथन करना था तो उस वक्त देवता और असुर वो दोनों अमृत के लिए लोभी थे। तो उस वक्त वो देवता और असुरगण एकत्रित हो गए थे। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, मंदार पर्वत को उठा के ले जा रहे थे लेकिन बहुत घायल हो गए। लेकिन खुद भगवान ने क्या किया, पर्वत को उठाया और जितने भी घायल हो गए थे उनको ठीक किया। बाद में कूर्म रूप अवतार में भगवान आए। तो ये भगवान का जो कूर्म रूप मीन अवतार है ये छठे मन्वंतर में हुआ था और ये जो लीला है आज हम जो श्रवण करने जा रहे हैं ये सातवें मन्वंतर में हुई है, वैवस्वत मन्वंतर में। तो इस प्रकार जब ही भगवान ने जो है मंदार पर्वत को धारण किया अपने पीठ पर और उन्होंने देवता ने क्या किया, वासुकी को बुलाया, उसको एक रस्सी के रूप में उन्होंने क्या किया पर्वत को लपेट कर, तो वो क्या कर रहे थे, क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। तो उस वक्त जो है असुर लोग कहने लगे, अरे ये पूछ पूछ है, ये तुच्छ है, ये हम पूछ नहीं पकड़ेंगे, हम ऊंचे लोग हैं, ऊंची पसंद, तो हम मुख का भाग पकड़ेंगे। तो देवता लोग बड़े दुखी हो गए। तो भगवान ने कहा देखो अभी मजबूरी आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने साइड बदला, तो जैसे ये हो रहा था मंथन हो रहा था तो वासुकी के मुंह से जो है ज्वाला और जहर वगैरह जो आया वो सब असुरों के मुंह पर गिर गया। उन्होंने पहले ये दिमाग नहीं लगाया था। तो आप देखते हैं कि जब ये समुद्र मंथन हो रहा था तो इसमें से 14 चीज प्रकट हुई है। अभी इतना समय नहीं कि आपको सब बता दे, लेकिन इसमें से महालक्ष्मी भी प्रकट हुई और अमृत भी प्रकट हुआ जो धन्वंतरी भगवान का एक लीला अवतार है। तो धन्वंतरी जो है जब ये अमृत लेके आए तो देवता और असुर ये सोच रहे थे पहले कौन पिएगा, पहले हम पहले तुम, तो झगड़े करने लग गए अहम पूर्वम अहम पूर्वम। तो क्या हो गया कि देवताओं से उन्होंने घड़ा छीन लिया। तो उस वक्त जो है भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया और जैसे वहां मोहिनी मूर्ति आ गई तो ये लोग अमृत ही भूल गए। तो मोहिनी मूर्ति का रूप देखकर जैसे अमृत भूल गए तो उन्होंने कहा अरे देखो हमारा ये झगड़ा ये अमृत के लिए हो रहा है और आप आए तो आप थोड़ा क्या करो हमारे लिए अमृत का बंटवारा करो। तो मोहिनी हालांकि भगवान विष्णु ही थे तो उन्होंने असुरों को कहा अरे आप लोग ऊंचे कुल वाले हैं समझदार है आपके अंदर सांत्वना है थोड़ा शांति से बैठो। तो ये देवता है जल्दीबाजी करते पहले उनको ऊपर का जो पतला पतला पिला देते हैं फिर नीचे का जो गाढ़ा है आपको बाद में खिलाएंगे। तो इस प्रकार जो है असुर एक लाइन में बैठ गए देवता लोग एक लाइन में बैठ गए। तो लेकिन असुरों में एक था राहु तो उसने देखा कुछ गड़बड़ है तो वो जो है सूर्य और चंद्र के बीच में आके बैठ गया। तो सूर्य और चंद्रमा तो उसकी बदबू से पता चल गया कि ये असुर है। तो उन्होंने कहा अरे जैसे मोहिनी ने उनके हाथ में ग्लास दिया था अमृत का तो जैसे पता चला भगवान को तो मोहिनी मूर्ति ने क्या किया सुदर्शन से उसका गला काट दिया। तो असुरों को पता चला अरे ये मोहिनी नहीं है ये विष्णु थे। तो उस वक्त क्या हो गया कि घमासान युद्ध हो गया देवताओं के अंदर और असुरों के अंदर। तो उस समय हालांकि बड़ा युद्ध हुआ तो समय के लिए वहां से दोनों हट गए। कुछ समय के पश्चात ऐसे उल्लेख आता है फिर से एक बड़ा युद्ध हुआ देवताओं के बीच में और असुरों के बीच में। और इंद्र ने क्या किया अपने वज्रास्त्र से जो है बलि उनको घायल कर दिया और बहुत सारे असुरों को घायल कर दिया। तो उस वक्त क्या हो गया कि शुक्राचार्य तो उन्होंने क्या किया कि जितने असुर घायल हो गए थे उनको क्या किया उन्होंने एक मंत्र औषधि से सबको ठीक कर दिया। तो उस वक्त क्या हो गया कि बलि महाराज ने देखा रे इन्होंने हमारे लिए इतना सेवा दिया है तो इनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो बलि महाराज से लेकर जितने भी असुर थे ये भृगु वंश के क्या हो गए शुक्राचार्य के उनके चेले बन गए। तो वहाँ बाद में शुक्राचार्य ने उनके लिए एक बड़ा एक यज्ञ किया जिसका नाम था विश्वजीत। तो जब ये यज्ञ किया तो बलि महाराज बड़े शक्तिशाली हो गए और बलि महाराज ने क्या किया फिर से अभी जो है स्वर्ग के ऊपर वहाँ वो आ गए युद्ध करने के लिए। तो इंद्र ने देखा अरे अभी तो ये बड़े शक्तिशाली बनकर आए हैं क्या करना चाहिए। तो तुरंत उन्होंने अपने गुरु महाराज से पूछा बृहस्पति से पूछा अभी हमें क्या करना चाहिए। तो बृहस्पति ने कहा कि देखो उनको गुरु का आशीर्वाद मिला है और अभी उनके पास सब कुछ सुसज्ज है तो आप कुछ नहीं कर सकते अभी आपको क्या करना पड़ेगा स्वर्ग छोड़ के भाग जाना पड़ेगा कहीं छुप के बैठो जाके। समय आने पर क्या होगा कि एक बार बलि क्या करेगा अपना गुरु का अवज्ञा करेगा तब जाके विष्णु भगवान वामन के रूप में आपका राज आपको वापस देंगे। तो इस प्रकार क्या हो गया कि बलि महाराज ने जो है इंद्रप्रस्थ अगर कोई दिल्ली गए होंगे तो एक मेट्रो रेलवे स्टेशन भी आता है इंद्रप्रस्थ। तो ये इंद्रप्रस्थ ने इसको कहा जाता है पुराना जो है जो पांडवों की जो नगरी थी। तो इस प्रकार क्या हो गया कि जब ही इंद्र वहाँ गद्दी पर इंद्र के गद्दी पर बलि महाराज बैठे थे तो उस वक्त जो है जितने भी भृगुवंश के ऋषि थे तो उन्होंने कहा कि देखो इंद्र का पोस्ट वही आदमी बैठ सकता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। तो बलि के तो 100 यज्ञ है नहीं तो उन्होंने फटाफट क्या किया कि बलि के लिए 100 यज्ञ कर दिए अश्वमेध यज्ञ। तो हालांकि बलि महाराज जो है उसके उस समय उस काबिल नहीं थे। तो यहाँ देवताओं की जो माता थी आदिति वो बड़ी दुखी थी और इसी के दौरान बताया था कि कश्यप मुनि जो है वो एक बड़ी तपस्या करने के लिए गए थे घर से बाहर। तो जब ये कश्यप मुनि लौट के आए तो उन्होंने देखा कि आदिति जो है बड़ी दुखी नजर आ रही है, तो उन्होंने पूछा, अरे आपका दुख का कारण क्या है, क्या हुआ? तो आपने वैष्णवों की सेवा नहीं की, यज्ञ नहीं किया, क्या हुआ, कारण क्या है? तो फिर आदित्य ने कहा, अरे देखो मेरे बच्चे अभी असुरों से डर कर छुप छुप के अपना जीवन व्यतीत कर रहे, तो मैं चाहती हूँ कि उनको अपना राज्य फिर से वापस मिल जाए, तो आप इसके लिए मुझे कुछ ऐसे व्रत बता दो जिससे मैं भगवान को प्रसन्न कर कर अपने बच्चों का जो है खुशहाल देख सकूं। तो कश्यप मुनि फिर वो सोच में पड़ गया, अरे ये विष्णु माँ भगवान की क्या माया है, तो भगवान इस दुनिया में सबको माया में जो है वो घेर के रखते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने उनको एक व्रत बताया, पयोव्रत। पयोव्रत का अर्थ है कि 12 दिन सिर्फ दूध पीकर एक व्रत करना चाहिए। और उसमें उन्होंने कश्यप मुनि ने अदिति को किस प्रकार सुबह से लेकर शाम तक भगवान का आराधना और अलग अलग प्रकार के जो भी सेवाएं करनी है वो सब कुछ उन्होंने उनको बताया। तो इस प्रकार अदिति जो है उन्होंने क्या किया कि 12 दिन तक लगातार सिर्फ दूध ग्रहण कर कर ये पयोव्रत किया। और जैसे उन्होंने ये पयोव्रत किया तो 12वें दिन उस दिन भगवान विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। और जैसे विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हो गए तो भगवान ने कहा, चलो कुछ आप आशीर्वाद मांगो, आपने ये किसके लिए जो पयोव्रत किया है तो आप उसके लिए कुछ हमसे वरदान मांगो। तो अदिति ने कहा कि देखो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र के रूप में मेरा जो है गर्भ में प्रवेश करके मेरे पुत्र के रूप में आप जो है प्रकट होकर असुरों से हमारे बच्चों का राज हमें वापस लेके दे दे। तो आप देखते कि वामनदेव जो है भगवान, बताया जाता है कि विष्णु भगवान ने क्या किया, ये वामनदेव का रूप धारण किया उसी वक्त। तो जैसे वहाँ भगवान ने ये रूप धारण किया तो वहाँ सब देवता लोग भी आए, और देवता लोगों ने क्या किया कि भगवान का जन्म से लेके जो है बाकी जितने भी संस्कार है, ऐसे तो हमारे जो संस्कार है कुछ 10-12 साल लगते हैं उपनयन संस्कार के लिए, 10-12 साल लगते हैं, लेकिन एक ही दिन में उधर क्या हो गया कि वामन देव का जन्म से लेके जात कर्म से लेके सब संस्कार एक ही दिन हो गए, और ब्रह्मा जी से लेके सब सारे देवता आए थे। तो अभी देवताओं ने किसने उन्हें क्या क्या दिया, जैसे आजकल लोग बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो काफ़ी लोग बहुत सारे खिलौने बहुत कुछ लेके आते हैं, तो अभी वामन देव को जो है देवताओं ने क्या क्या उन्हें दिया उसकी एक बड़ी लंबी सूची है, तो उसको हम बताएंगे। तो ऐसे बताया जाता है कि जब ही उनका इन्होंने कश्यप मुनि और आदित्य ने उनका संस्कार आरंभ किया तो उस वक्त जो है बताया जाता है कि सूर्यदेव ने स्वयं जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। उसके पश्चात बृहस्पति जो है उन्होंने उनको जनेऊ दिया, बृहस्पति जो देवताओं के जो गुरुजी हैं। फिर जो कश्यप मुनि है उन्होंने उनको मुंजा घास का जो मेखला उसका भेंट दिया। माथा जो पृथ्वी है उन्होंने उनको मृग चर्म यानी ये हिरण का जो चमड़ा है वो उनको उन्होंने दे दिया। उसके बाद में जो वनस्पतियों के जो राजा है, किसी को मालूम है वनस्पतियों के राजा कौन है? चंद्रमा। हाँ, तो चंद्रमा ने उनको जो है एक ब्रह्मचारी का डंडा दे दिया। उसके पश्चात जो है आदिति उनकी जो स्वयं जो माता है उन्होंने उनको कौपिन के वस्त्र दिए। फिर स्वर्गलोक के जो है इंद्र है आदिनायक उन्होंने उनको छाता दे दिया। ब्रह्मा जी ने जो है उनको कमंडलु दे दिया। उसके पश्चात जो है सप्तऋषि थे उन्होंने उनको कुशा घास दिया। उसके पश्चात यक्षराज, अभी किसी को मालूम है यक्षराज कौन है? हाँ, कुबेर। तो कुबेर जो देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर है तो उन्होंने उनको जो है वो भिक्षा पात्र दिया। और इसके पश्चात जो है शिव जी की जो पत्नी है तो उन्होंने क्या किया, उन्हें पहला जो भेंट जो है दक्षिणा उन्होंने दे दी। तो इस प्रकार जो है बताया जाता है कि भगवान को मालूम था कि अगला कार्य क्या करना है। तो उस वक्त बताया जाता है कि वामनदेव उनको पता चला कि बलि महाराज भारत के उत्तर में जहाँ नर्मदा नदी बहती है तो वहाँ एक जगह है, उसका नाम है भृगु कच्छ, उस जगह का नाम है। तो वहाँ उनको पता चला कि अभी बलि महाराज जो है वहां यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने सोचा चलो अभी वहां चलते हैं। तो इस प्रकार वामन देव जो है वहां से पधारे और सीधे वहां गए जहां बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। तो उस वक्त जो है वहां जितने भी भृगुवंश के ऋषि थे तो उन्होंने देखा, उनको लगा अरे कहीं सूर्य देव या अग्नि देव तो नहीं आए, क्योंकि सबकी चमक जो है वो कम हो गई और वामन देव जो है उनकी ब्रह्म ज्योति से इतने चमक रहे थे। तो उस वक्त क्या हो गया कि सब लोगों ने क्या किया, अपना कार्य स्थगित करके उनका वहाँ स्वागत किया। और जैसे बलि महाराज को पता चला कि ये जो है स्वयं एक इतने सुंदर जो है ऋषि है, तो उन्होंने सोचा चलो हम इनका यहाँ स्वागत करते हैं। तो बलि महाराज ने उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए, चरण धोने के पश्चात वो पानी सबके सर के ऊपर डाला। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि देखो मैं 14 जगत का राजा हूँ और मैं यहाँ जो है विश्व विजय का एक बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, तो आप मुझसे जो भी चाहिए आप शर्माओ मत, जो भी चाहिए आप मेरे से मांगो, आपको चाहिए तो मैं एक द्वीप दे सकता हूँ, जितना चाहिए सोना चांदी हीरे मोती। एक आचार्य ये बताते हैं, उन्होंने कहा कि चाहिए तो आपके हाइट की हम लड़की भी ला के दे सकते हैं। यहाँ तक जो है, क्योंकि वामन देव की जो हाइट थी हाँ उनका कद सिर्फ 3 फीट, अभी 3 फीट यानी बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार क्या हो गया कि बलि महाराज उनसे ये कर रहे थे, अनुरोध कर रहे थे कि आप जो चाहिए वो मांगो। तो उस वक्त जो है वामन देव जो है उन्होंने क्या किया कि बलि महाराज से उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक बताया वामन देव ने, यावत विषय प्रेष्टा त्रैलोक्यम अजेतेन्द्रिय न सुक्नवंती ते सर्वे प्राप्तयन्तुम नृप। बलि महाराज जो है उनको वामन देव क्या बता रहे कि अगर एक व्यक्ति को पूरा 14 जगत में मिल जाए लेकिन अगर उस व्यक्ति के इंद्रिय अगर काबू में नहीं है, वो व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होगा। अभी वामन देव जो है बलि महाराज को कुछ एक सबक सिखाना चाहते हैं। जैसे आप लोग देखते कि रावण था, उसके पास सब कुछ था लेकिन तृप्त नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का धन क्या है, वो है ब्राह्मण का धन है गरीबी। ब्राह्मण का जो है धन है गरीबी। अगर ब्राह्मण के पास धन है वो भगवान को धीरे धीरे भूल जाता है, तो ब्राह्मण को गरीब रहना ये उसके लिए उचित है और उसके लिए अच्छा है। उसके पश्चात जो है आप देखते हैं कि वामन देव ने क्या किया कि बलि महाराज को कहा कि देखो आपके जो पूर्वज थे वो तो बड़े बड़े शूर योद्धा थे, दानी थे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हिरण्यक्ष, मैंने सुना है कि हिरण्यक्ष के बारे में, तो उनके साथ जब भी भगवान आए वराह रूप धारण करके तो बहुत मुश्किल से जो है वराह देव जो है वो संध्या के समय बहुत मुश्किल से उनसे जीत गए। तो ऐसे देखा जाए कि हिरण्यक्ष जो है बहुत शक्तिशाली थे। और उसके बाद में जैसे हिरण्यकश्यप को पता चला कि उनके भाई का वध हो गया, वो बड़े क्रोधित हो गए। तो उन्होंने सोचा अरे ये विष्णु है क्या, कौन है, चलो मैं देखता हूँ। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यप जो है वो विष्णु का सब जगह वो उसकी तलाश कर रहे थे विष्णु का। तो विष्णु भगवान जो है वो डर गए और वो जो है जाके हिरण्यकश्यप के हृदय में छुप के बैठ गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो हिरण्यकश्यप सब बाहर देख रहा था, उसने कभी अपने हृदय में देखा ही नहीं कि भगवान हृदय में भी बैठते हैं। तो इस प्रकार आप देखते कि हिरण्यकश्यप ने पूरा छान मारा 14 जगत, तो उसने देखा अरे विष्णु कहीं मिलता ही नहीं है। तो उसने सोचा चलो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं यमराज जी के पास चला गया होगा। तो उसने ऐसे ये किया सोचा। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि प्रहलाद महाराज, वो तो एक बड़े भक्त थे भगवान के। फिर प्रहलाद के जो पुत्र थे विरोचन, उनके जितना दानी तो कोई होगा ही नहीं, उन्होंने अपने आप को जो है समर्पण किया। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि बलि महाराज जो है उनकी बहुत बड़ी स्तुति की वामन देव ने। तो इसके पश्चात जैसे जो है वामन देव संकल्प करने वाले ही थे, ऐसे बताया था है कि भागवतम में उल्लेख आया है कि संकल्प के समय ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये शुक्राचार्य देख रहे थे। तो शुक्राचार्य ने जो है उनके मन में भी विचार आया कि मेरा जो शिष्य है ये क्या कर क्या रहा है। तो उस वक्त जो है उन्होंने उनको बताया कि बलि महाराज को देखो दान धर्म ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन नीति शास्त्र के अनुसार आपको यह भी सोचना चाहिए कि सब कुछ दे दो, अपने लिए कुछ मत रखो, ऐसे नहीं। जैसे शिवजी है, बताया था कि एक बार शिवजी अपना घर प्रवेश कर रहे थे, तो जो भी आ रहे थे सबको एक एक आइटम देते देते लास्ट में अपना सिर्फ घर बच गया था। तो लास्ट में जो ऋषि आए उनको कहा कि आप घर ले लो, तो फिर वो बाहर निकल गए। तो जैसे शुक्राचार्य ने उनको खबरदार कर दिया, तो बलि महाराज ने अपने गुरु से कहा, अरे गुरु जी देखो, मरने के बाद सब कुछ जाना ही है, अगर हम भगवान के अगर भक्ति में सेवा में लगाएंगे तो कम से कम हमारा नाम तो होगा, नहीं तो ये जो है कृपण होने का क्या फायदा है। ऐसे तो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, और ऐसे भी भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे तो अच्छी बात है। तो लेकिन बलि महाराज जो है उनका जो है ये, जब उन्होंने अपने गुरु की बात इनकार की तो शुक्राचार्य थोड़े क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया, बोला मूर्ख तुम नहीं जानते कि ये साक्षात जो है विष्णु भगवान है, हाँ ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, और क्या करेंगे ये 3 पैरों में पूरे ब्रह्मांड को आवरण कर लेंगे और तुमको बंदी बनाकर सूतल में भेज देंगे, नरक में भेज देंगे, तो ये याद रखना। तो फिर वामन देव ने सोचा चलो हम सब कुछ भगवान का दिया हुआ है तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो वामन देव ने जो है सॉरी बलि महाराज ने कहा कि चलो हम भगवान का सब कुछ है तो भगवान को हम दे देते। तो इस प्रकार जो है बलि महाराज जो है उन्होंने वामन देव से अनुरोध किया, चलो आप अपना 3 जो है पैर जगह ले लो। तो उस वक्त बताया था कि वामन देव भगवान ने अपने पहले पैर को, पैर से पूरा स्वर्ग जितने भी लोग हैं उसको आवरण कर लिया, दूसरे पैर से पूरे स्वर्ग के ऊपर, बताया था कि उनके पैर से ये ब्रह्मांड का जो है वो ऊपर का स्तर है वो फट गया, तो उसमें से बताया था कि जो है जो ये नदी है जो विरजा नदी उसका पानी भी नीचे आ गया। तो इस प्रकार वामन देव भगवान ने उनसे कहा कि देखो अभी तीसरा पैर रखने के लिए कहीं जगह नहीं है, आप बताओ हम तीसरा पैर कहाँ रखें, नहीं तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो उस वक्त जो है बलि महाराज ने कहा कि देखो मेरा सर खाली है, आप जो है आपका तीसरा पैर है मेरे सर के ऊपर रख दो। तो इस प्रकार बलि महाराज ने क्या किया, आत्मसमर्पण किया। तो ऐसे हमारे आचार्य ये भी बताते हैं कि भगवान ये बताना चाहते थे कि भगवान के भक्त कितने बड़े होते हैं, वो भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो बलि महाराज ने क्या किया, अपने आप को आत्मसमर्पण किया। तो उसी समय क्या हो गया कि प्रहलाद महाराज भी आ गए और गरुड़ जी ने बलि जी को, बलि महाराज को बंदी कर दिया। तो उस वक्त जो है वामन देव ने बलि महाराज से कहा कि देखो अभी आप मेरे बड़े भक्त हो तो मैं आपको इससे भी बढ़िया स्वर्ग देना चाहता हूँ, एक इससे भी बढ़कर एक स्वर्ग है तो उसको कहते हैं बिल्व स्वर्ग, तो आप वहाँ के राजा बन जाओ और आपका मैं पहरेदार बनूंगा, आपका मैं वॉचमैन बन जाऊंगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि बलि महाराज जो है उनको भगवान ने जो है वामन देव ने फिर वहाँ से यहाँ भेज दिया, सूतल में भेज दिया, और जितने भी देवता थे भगवान को क्या करना था, सबको प्रसन्न करना था। तो इस प्रकार वामन देव भगवान ने जो है बलि महाराज को वहाँ भेजा। तो ये जो लीला हुई थी ये इस मनोन्तर में, अभी 7वां जो मनोन्तर चल रहा है वैवस्वत मनोन्तर, तो भागवतम में उल्लेख आता है कि अभी अगला जो मनोन्तर आएगा 8वां मनोन्तर, तो उस मनोन्तर में बलि महाराज जो है वो क्या बनेंगे, वो इंद्र बनेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अभी 100 यज्ञ तो किए हैं, तो उनको पहले ही उनको पोस्ट जो है, अगला पोस्ट उनको बता दिया है कि अगले मनवंतर में 71 युग के लिए जो है बलि महाराज अगले मनवंतर, अभी तो उसके लिए बहुत समय है। अभी जो है 7वां मनवंतर चल रहा है और उसका 28वां युग चक्र चल रहा है अभी, और 71 तक यानी बहुत समय है, तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। बोलो श्री बलि महाराज की, बोलो श्री वामन देव भगवान की। तो जैसे आज जो है जीव गोस्वामी उनका भी आविर्भाव दिवस है, तो हमारे जो 6 गोस्वामीज है तो उसमें से खास करके जीव गोस्वामी, वो काफ़ी बचपन से वो जो है यानी वो कृष्ण भगवान के भक्त थे। तो बताया जाता है कि उनके पिताजी ने उनको बचपन में ही कृष्ण और बलराम जी का विग्रह दिया था, तो बचपन में से ही वो भगवान के भक्त थे। तो ऐसे उल्लेख आता है कि जब ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन आने वाले थे, तो कुछ समय के लिए चैतन्य महाप्रभु बंगाल गए थे। वहाँ एक जगह है रामकेली करके, तो वहीं जो है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उस समय वो दबीर खास साकर मलिक के नाम में वहाँ रहते थे, और उनके तीसरे भाई थे अनुपम। तो बताया था कि वहाँ चैतन्य महाप्रभु जो है वहाँ उनसे मिले। उस समय अनुपम के पुत्र थे जीव गोस्वामी, उनका नाम था जीव। तो उनको बचपन में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ था, लेकिन वो उस वक्त जो है पार्षद नहीं बन पाए। और फिर बाद में अनुपम जो है वो गृहस्थी थे और वो राम भगवान के बड़े भक्त थे। तो जैसे जीव जो है छोटे थे, तो एक समय वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे बंगाल से, तो कुछ कारणवश जो है उन्होंने रास्ते में अपना शरीर छोड़ दिया राम भगवान का नाम लेते लेते। तो जैसे वो ये हो गए, गुजर गए, तो जीव जो है वो बेचारे अकेले पड़ गए। तो उस वक्त जो है वो बड़ा क्रंदन कर रहे थे। तो जब ही क्रंदन करके रो रहे थे, तो उस वक्त जो है जो ये है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उनके जो पार्षद है पंचतत्व, तो उनके सपने में वो प्रकट हो गए। और वही पंचतत्व जो है उन्होंने उनको कृष्ण बलराम जी का रूप दिखाया। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि देखो आप क्या करो, आप बंगाल जाओ और वहाँ नित्यानंद प्रभु है, और आप क्या करो जाके नित्यानंद प्रभु उनका शरण ले लो। तो इस प्रकार क्या हो गया कि जीव गोस्वामी जो है वो, उनका तभी नाम जीवी था, तो वो फिर वहाँ से वापस जो है वहाँ आ गए, नवद्वीप आ गए। और वहाँ उन्होंने क्या किया कि नित्यानंद प्रभु उनकी भेंट की, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया और जो है उनको सची माता और विष्णु प्रिया के पास लेके गए। और सची माता ने जो है उनके लिए बहुत बढ़िया प्रसाद खिलाया, और उसके पश्चात विष्णु प्रिया ने उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु का जो भी कार्य है उसको आगे पूरा करो। तो इसके पश्चात बताया था कि नित्यानंद प्रभु जो है जीव गोस्वामी को जो है उन्होंने पूरे जो है गौड़ मंडल में जहाँ भी चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली है सब जो है जगह उनको वो लेके गए, और उन्होंने उनको सब लीला स्थलियों का अच्छी तरह दर्शन करवाया। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि देखो आपके जो अंकल्स थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके लिए कुछ खास कार्य दिया है, वो है कि वृंदावन को फिर से प्रकट करना, और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वैष्णव ग्रंथ है, उनको फिर से लिखने का कार्य उनको उन्होंने दिया है। तो आप क्या करो, अभी आप जाके विद्या वाचस्पति जो सार्वभौमा भट्टाचार्य उनके शिष्य है, तो आप क्या करो जाके वहाँ त्रिवेणी संगम में इलाहाबाद, तो वहाँ जाके विद्या वाचस्पति उनके अधीन में आप सारे ग्रंथों का अध्ययन करो, पढ़ाई करो। और उसके पश्चात आप क्या करो, वृंदावन जाओ और जाके उनकी मदद करो। तो क्या हो गया कि जीव गोस्वामी जो है उन्होंने सबका बंगाल में आशीर्वाद लिया, उस वक्त जितने भी वैष्णव थे, और वहाँ से वो जो है वृंदावन के लिए निकले। और उन्होंने क्या किया कि वहाँ इलाहाबाद में संपूर्ण स्टडी किया, अध्ययन किया विद्या वाचस्पति के उनके अधीन में, और उसके पश्चात जो है वो वृंदावन आए। तो जब ये वो वृंदावन आए, तो आप देखते हैं कि जैसे रूप सनातन गोस्वामी उनको पता चला कि जीव जो है ये वृंदावन आ रहे, तो उस वक्त जितने भी वृंदावन में जितने भी वैष्णव थे, तो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, तो उन्होंने सब ने मिलकर क्या किया, उनका स्वागत किया। और उसके पश्चात रूप गोस्वामी जो है उन्होंने जीव गोस्वामी को उनके कार्य में लगा दिया, उनके कार्य में यानी उन्होंने उनको कहा कि देखो हम जितने भी ग्रंथ लिख रहे हैं उसके लिए आप क्या करो, ये कागज जो भी उसके लिए पत्र लगता है और इंक, और हमारे लिए रसोई से लेके जो भी कार्य है भगवान के लिए माला बनाना, तो ये सब कुछ कार्य जो है वो जीव गोस्वामी को उन्होंने दिया था। और इस प्रकार जीव गोस्वामी क्या करते थे, प्रतिदिन ये कार्य जो है खास करके जीव रूप गोस्वामी के लिए एक साधारण एक जो है नौकर के मापी वो कार्य करते थे। तो ऐसे काफ़ी समय निकल गया और वो जो है रूप गोस्वामी की जो है सेवा में बिल्कुल निरत लगे हुए थे। तो उल्लेख आता है कि एक बार जो है एक व्यक्ति थे बहुत पढ़े लिखे पंडित, उनका नाम था रूप नारायण। तो ये रूप नारायण जो है वो खास करके दिग्विजयी बनना चाहते थे और वो उनको पता चला कि वृंदावन में भी दो बड़े जो है पंडित है, तो चलो हम जाके उनसे भी ये कर लेते संवाद करते हैं। तो जब ही ये रूप नारायण जो है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास आए तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ ये संवाद करना चाहता हूँ। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उन्होंने सोचा अभी हम अपना समय व्यर्थ बर्बाद क्यों करें। तो रूप गोस्वामी भक्तिरसामृत सिंधु में लिखते हैं अव्यर्थ कलत्वम। अव्यर्थ कलत्वम का मतलब है कि एक व्यक्ति को बिना मतलब का अपना समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, रूप गोस्वामी खास करके लिखते हैं। तो उन्होंने सोचा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कि हम इनसे कुछ समय व्यर्थ एक हफ्ता बिना मतलब का चला जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो गया कि उन्होंने कहा कि आपका विजय पत्र बताओ हम सिग्नेचर कर देते हैं। तो रूप नारायण ने अपना विजय पत्र निकाला तो उन्होंने उसमें अपना सिग्नेचर कर दिया। तो बाद में रूप नारायण को पता चला कि इनका एक कोई असिस्टेंट भी है, वो भी बड़ा बुद्धिमान है, चलो यहाँ आए तो उसके साथ भी कुछ संवाद करते हैं। तो फिर रूप नारायण जो है वो जीव गोस्वामी के पास आए तो उन्होंने कहा अरे मैंने सुना कि आप भी बड़े विद्वान हैं तो हम आपके साथ भी जो है ये संवाद करना चाहते हैं। तो जीव गोस्वामी उनके मन में एक विचार आया तो ये व्यक्ति इतना पाखंडी है, इन्होंने तो हमारे जो अंकल्स हैं उनके पास तो सिग्नेचर ले लिया, आगे जाके ये बहुत ही अपना पराक्रम दिखाएगा, ये इसका मिथ्या अहंकार है, इसके लिए कुछ दवा देनी चाहिए, इसको अच्छा दवा देना चाहिए। तो इस प्रकार क्या हो गया कि जीव गोस्वामी ऐसे उल्लेख आता है कि रूप नारायण के साथ उन्होंने क्या किया एक हफ्ते तक उसके साथ संवाद करके उसको बुरी तरह हरा दिया। तो वहाँ से वो जो है रूप नारायण बड़ा दुखी होकर निकल गया। तो किसी प्रकार ये बात है वो रूप गोस्वामी जो है उनको पता चला तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बुलाया अरे आप वृंदावन में रहने के योग्य नहीं हैं, वृंदावन में पूजा लाभ प्रतिष्ठा की कामना नहीं करनी चाहिए, हाँ आपके अंदर ये कोई योग्यता नहीं है, आज से मैं आपका मुख देखना नहीं चाहता, आप वापस बंगाल के लिए निकल जाओ। तो जीव गोस्वामी बड़े दुखी हो गए। तो बाकी जितने भी वैष्णव थे उन्होंने कहा मना किया नहीं नहीं मत जाओ समय आने पर आपको माफ़ कर देंगे। तो इस प्रकार जो है किसी प्रकार जीव गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे। कुछ समय निकल गया तो कुछ समय के पश्चात जो है एक बहुत बड़े आचार्य आ गए वल्लभाचार्य। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक वल्लभाचार्य करके थे, वो उम्र में काफ़ी बुजुर्ग थे, चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, पहले वो चैतन्य महाप्रभु के साथ ही बंगाल में थे। तो वो जब ही आए थे वृंदावन वल्लभाचार्य तो उस वक्त जो है वो रूप गोस्वामी का भेंट कर रहे थे। तो रूप गोस्वामी ने से उन्होंने कहा कि चलो हम थोड़ा देखना चाहते कि आप क्या क्या लिख रहे। तो रूप गोस्वामी ने उन्हें कहा कि देखो ये ग्रंथ मैंने लिखा है, आप इसमें जो भी करेक्शन है आप कर सकते हैं। तो क्या हो गया कि उन्होंने जो है कहा कि इसमें कुछ जो भी है मैं उसको सुधार कर दूंगा। तो उस वक्त जो है बताया था कि जीव गोस्वामी जो है वो देख रहे थे अरे ये क्या कर रहे हैं, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं, ये कैसे इसको सुधार रहा है। तो जीव गोस्वामी ने उनसे कहा कि इसमें ये कोई गलती नहीं है। तो जीव गोस्वामी जो है उनका व्याकरण देखकर वल्लभाचार्य बड़े चकित हो गए। तो उन्होंने जाके रूप गोस्वामी से कहा अरे ये लड़का तो बहुत ही बुद्धिमान है, तो आपने जो लिखा है सब कुछ ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, हाँ इसमें कुछ करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं। तो आपकी बार जो है रूप गोस्वामी सचमुच बड़े क्रोधित हो गए, बड़े उनका जो है गुस्सा बहुत ही बड़ा बढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि देखो जीव गोस्वामी से कहा कि अभी तुम यहाँ से अच्छी बात है निकल जाओ। तो बताया जाता है कि जीव गोस्वामी काफ़ी दूरी पर गए, तो वृंदावन में अगर कभी आप ब्रजमंडल परिक्रमा जाएंगे एक जगह आता है नंदघाट शेरगढ़ में, काफ़ी दूर है। तो वहाँ नंद घाट एक जगह है, तो वहाँ यमुना के किनारे वहाँ जाके जीव गोस्वामी वहाँ रहने लग गए। तो जैसे सनातन गोस्वामी वो वृंदावन के ब्रजवासियों के ये थे, आचार्य थे, और वो क्या करते थे, सब जगह भ्रमण करते थे। तो एक बार जो है सनातन गोस्वामी वहीं कहीं एक गांव में गए थे मधुकरी करने के लिए। तो क्या हो गया कि एक घर में वो मधुकरी मांग रहे थे, तो वहाँ की एक ब्रजवासी माता थी जो थी, उसने कहा रुको आ रही हूँ। वो पता नहीं अपने गाय को या उसको चारा खिला रही थी। तो फिर दूसरी बार जो है सनातन गोस्वामी ने कहा भिक्षान देही, तो उसने कहा रे इससे तो हमारा वो बाबा अच्छा है, वो आके चुप खड़ा होता है, ये पता नहीं कौन सा बाबा आ गया भिक्षा मांगने के लिए। तो अभी सनातन गोस्वामी सोच में पड़ गए, ऐसे कौन सा बाबा है जो आके चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो उन्होंने कहा अरे बताओ ये बाबा कौन है, कहाँ रहता है। तो उन्होंने कहा कि यमुना के किनारे वहाँ वो रेत में जहाँ जिसके मगरमच्छ रहते हैं उसके बिल में रहता है। तो इस प्रकार जो है सनातन गोस्वामी वहाँ आए, तो उन्होंने देखा अरे ये तो जीव गोस्वामी वहाँ है। तो उस वक्त जो है वो बिल्कुल दुबले पतले हो गए थे शरीर से। तो सनातन गोस्वामी के हृदय में काफ़ी करुणा आई और जीव गोस्वामी को वो लेके आए रूप गोस्वामी के पास। तो उन्होंने कहा कि देखो आप चैतन्य महाप्रभु का सब ग्रंथों को लिख रहे, तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है बताओ। तो उन्होंने कहा जीवे दया। तो ये क्या है, ये कोई जीव दया है, इसके ऊपर आप क्या जीव दया कर रहे हैं। तो उस वक्त जो है फिर बताया था कि रूप गोस्वामी ने उनको आलिंगन कर लिया। हाँ, फिर उन्होंने उनको अपने कार्य में फिर से लगा दिया। तो आगे उल्लेख आता है कि आप देखते हैं कि राधा दामोदर का जो विग्रह है, जो हम लोगों का वैष्णव का जो प्रमुख मंदिर है, तो राधा दामोदर का विग्रह जो है स्वयं रूप गोस्वामी ने बना के जीव गोस्वामी को दिया। और जीव गोस्वामी वो क्या करते थे कि प्रतिदिन राधा दामोदर भगवान के लिए नित्य सेवा करते थे। तो ऐसे भी उल्लेख आता है कि कभी कभी राधा दामोदर जो है उनको चैतन्य महाप्रभु का रूप दिखाते थे, और उनको कभी कभी मुरली बजा के सुनाते थे, और कभी ऐसे भी कहते थे कि हम ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, जैसे घर में कहते ना आज ब्रेकफास्ट में ये बनाओ, लंच में ये बनाओ। तो बताया था कि राधा दामोदर भगवान उनको अपना मेनू दे देते थे, आज लंच के लिए ये होना चाहिए। तो इस प्रकार बताया था कि जीव गोस्वामी जो है भगवान के साथ उनके बहुत सारे आदान प्रदान है। तो आगे आप देखते हैं कि जीव गोस्वामी बड़े विख्यात जो है वो वृंदावन के आचार्य बने, और काफ़ी जगह से जो है ये आते थे वैष्णवगण पढ़ने के लिए। और खास करके भक्ति रत्नाकर में उल्लेख आता है नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास, ये तीनों ने उन्होंने क्या किया कि जीव गोस्वामी के अधीन में उन्होंने पढ़ाई किया। काफ़ी लंबी कथा आती है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जब ही जानव माँ जो है वो चाहती थी कि ये वैष्णव ग्रंथों का बंगाल में अनुवाद हो जाए, तो इन ग्रंथों को जो है ये बंगाल भेजना था। तो जीव गोस्वामी ने जो है इन तीनों महंतों को एक बैलगाड़ी में इन किताबों को डाल के वृंदावन से विदा कर दिया था। तो उसके पश्चात आप देखते हैं कि ऐसा एक उल्लेख आता है कि एक बार जो है अकबर वो भी वृंदावन का भ्रमण कर रहे थे, वृंदावन आए थे। अकबर उस समय यहाँ दिल्ली में राज कर रहे थे। तो अकबर बताया था कि वो भी बहुत अच्छे धार्मिक थे। तो जब ये वो वृंदावन आए थे तो उन्होंने जीव गोस्वामी की भेंट ली। तो जीव गोस्वामी ऐसे बताते हैं लोग कि उस वक्त जो है अकबर ने मदन मोहन जी और राधा गोविंद जी और जो है जब भी हम लोग परिक्रमा में जाते हैं तो केसी घाट में एक युगल किशोर का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, लेकिन वहाँ भी विग्रह है नहीं। तो केसी घाट के पीछे बिल्कुल एक बहुत ही सुंदर मंदिर है राधा युगल किशोर। तो अकबर ने इन मंदिरों के निर्माण के लिए थोड़ा कुछ धन दिया था। तो ऐसे भी उल्लेख आता है कि जीव गोस्वामी जब भी अकबर को वृंदावन का भ्रमण करा रहे थे तो अकबर ने कहा था कि और कुछ सेवा है तो बता दो। तो बताया था कि जीव गोस्वामी ने कहा था कि हमारा जो एक केसी घाट है इसके कुछ पत्थर पानी में गिर गए, उन पत्थरों को फिर से वापस लगाना है। तो बताया था कि जब ये अकबर भ्रमण कर रहे थे तो अकबर को कुछ समय के लिए ऐसे एक दिव्य दृष्टि, वृंदावन में भगवान कभी कभी किसी ना किसी को, अगर किसी की चेतना अच्छी है उसको दिव्य दृष्टि दे ही देते। तो अकबर को कुछ समय के लिए ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। तो अकबर ने क्या देखा कि ये साक्षात जो है, जो केशी घाट है, तो ऐसे चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है, चमकदार पत्थरों से। तो उन्होंने जीव गोस्वामी से कहा, अगर हमारा जो खजाना है पूरा भी खत्म कर देंगे तो इसमें से चार पांच पत्थर भी नहीं लगेंगे। वो इतना लोभी नहीं था कि चलो यहाँ से कुछ लेके जाते हैं। तो ऐसे बताया था कि अकबर को एक दिव्य दृष्टि मिली। तो आगे ऐसे भी उल्लेख आता है कि एक गैजेट है उसमें उल्लेख आता है कि ये जो निधि वन है, खास करके भगवान का जो है, कृष्ण भगवान का रासलीला के बाद में भगवान वहाँ शयन करते हैं, तो ये अकबर से उस समय मुसलमान के अधीन में था ये जगह। तो बताया था कि जीव गोस्वामी ने ये अकबर से ये 13 रुपए में, ये 500 साल पहले इस जमन को, इसका कोई एक डीड है, बताया था है कि जीव गोस्वामी ने अकबर से 13 रुपए में ये जमीन लिया था। तो अगर वास्तविक में हम देखते हैं कि 500 साल पहले जो वृंदावन में जो है, बाकी अन्य कोई संप्रदाय के कोई नहीं थे। पहले सबसे पहले वृंदावन में जो है हमारे जो वैष्णव आचार्य आए थे 800 साल पहले, वो है लीला सुख। कोई जानता है लीला सुख का मतलब कौन है? लीला सुख किसी को मालूम नहीं? हाँ, बिल्व मंगल ठाकुर। बिल्व मंगल ठाकुर जो है वो 800 साल पहले वृंदावन आए थे और साक्षात कृष्ण भगवान उनके साथ खेलते थे। कृष्ण भगवान जो है, हालांकि वो अंधे थे, उनकी भी अलग ही कथा है। तो उनके पश्चात आप देखते हैं कि वृंदावन में कौन आए थे, उनके पश्चात कौन आए थे, किसी को मालूम है? कोई बता सकता है? माधवेंद्रपुरी आए थे उसके बाद में। माधवेंद्रपुरी जब आए थे तो उन्होंने 12 वनों का भ्रमण किया था और माधवेंद्रपुरी को जो है भगवान ने, गोपाल जी ने दर्शन दिया था। उन्होंने कहा कि देखो, वज्रनाभ ने मेरा विग्रह बनाया था और जब भी मुसलमान का आक्रमण हुआ तो ये ब्राह्मण मुझे यहाँ गढ़ के भाग गए, आप मुझे बाहर निकालो। तो आप देखते हैं कि भगवान ने माधवेंद्रपुरी को दूध भी पिलाया था। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि उसके पश्चात, माधवेंद्रपुरी के पश्चात आप देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु, फिर उसके बाद में अद्वैत आचार्य और ऐसे भी मुरारी गुप्ता, बहुत सारे आचार्य जो है, अद्वैत आचार्य, काफ़ी आचार्य बाद में आते गए। फिर चैतन्य महाप्रभु, उनकी भी एक तीव्र इच्छा थी वृंदावन आने की, और चैतन्य महाप्रभु भी आए थे 1515 यानी 502 साल पहले चैतन्य महाप्रभु वो वृंदावन आए थे। और चैतन्य महाप्रभु ने खास करके हमारे जो 6 गोस्वामीज है, उनसे उन्होंने अनुरोध किया था कि आप क्या करो कि वृंदावन में जितने भी जगहें लुप्त हुई हैं उनको आप क्या करो, फिर से प्रकट करो। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जीव गोस्वामी जो है, उनको खास करके उनको ज़्यादा श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारे वैष्णव ग्रंथ है उनको उन्होंने सुरक्षित रखा था। और राधा दामोदर मंदिर में जो है, सनातन गोस्वामी को जो भगवान ने जो शिला दी थी, जो गिरिराज जी की शिला, वो शिला भी वहाँ है। और रूप गोस्वामी का जो है समाधि भी जो है, राधा दामोदर मंदिर जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तो मंदिर के राइट साइड में ये जो है जीव गोस्वामी का, और लेफ्ट साइड में जो है रूप गोस्वामी का भी समाधि है। तो वैष्णव आचार्यों के कहने के अनुसार तो ऐसे बताया जाता है कि जब भी हमारे आचार्यों का आविर्भाव या तिरोभाव होता है तो उनसे हमें प्रार्थना करना चाहिए, उनकी कृपा की याचना करना चाहिए। तो आज के दिन हमें जो है, खास करके जीव गोस्वामी, उनसे यही कृपा करनी चाहिए कि वो भी हमारे ऊपर कुछ कृपा करें, ताकि हम वृंदावन में कैसे रहना चाहिए और वृंदावन में भगवान की सेवा, निरंतर सेवा कैसे करनी चाहिए। तो एक आचार्य बताते हैं, हालांकि जीव गोस्वामी इतने पढ़े लिखे थे, फिर भी रूप गोस्वामी ने उनको एक ऐसे तुच्छ कार्य में लगाया कि ये बताने के लिए कि वृंदावन में कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति को ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं महान पंडित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। तो एक व्यक्ति को हर समय बिल्कुल नम्र कार्य में लगे रहना चाहिए। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी जो है, उनके बहुत सारे जो है काव्य है। और आज भारत में जो ये बनारस यूनिवर्सिटी है, वहाँ हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो आज भी वहाँ जीव गोस्वामी का जो है ग्रामर पढ़ाया जाता है। तो ऐसे भी ग्रामर पढ़ने के लिए किसी को मालूम है कितना साल लगता है? कोई ग्रामर का स्टूडेंट है इधर? हाँ, कोई बताते 7 साल, कोई बताता है 14 साल। तो जीव गोस्वामी के कितने उन्होंने श्लोक की रचना की है, कोई बता सकता है? हाँ, 5 लाख। तो उनके जितने भी ये है ग्रंथों का, आज भी काफ़ी लोग वहाँ, खास करके जो संस्कृत पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ जो है बनारस यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ाई करते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि हमारे खास करके जो 6 आचार्य में जीव गोस्वामी जो है उनका भी जो है काफ़ी श्रेय ये है, अनुदान है हमारे लिए वैष्णवों के लिए। तो आज उनके चरणों में हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो आज मंदिर में 10 बजे जो है वामन देव का अभिषेक भी होगा, तो उसमें भी आप जो है आ सकते हैं। बोलो श्री वामन देव भगवान की, बोलो श्री जीव गोस्वामी पाद की, हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की।